गाथा, रूप वही, रूप नया।
गाथा में आप सुन रहे हैं मालती जोशी द्वारा लिखित कहानी तहादे नजर एक बयाबान सा क्यों है। सामने वाली बर्थ पर बैठा वह व्यक्ति मुझे लगातार देखे जा रहा था। कभी मेरी कभी पत्नी की नजर बचाकर उसका घूरना जारी था। उसकी वह दृष्टि मुझे असहज बना रही थी। इस उम्र में इस तरह घूरा जाना बड़ा अटपटा लगता है। जब उम्र थी तब तो किसी ने इतनी तवज्जो नहीं दी थी। मैं तो इसी हीन बोध को लेकर बड़ी हुई हूं। रास्ते में भूले भटके कभी कोई फब्ती कस देता और मैं घर आकर बताती तो बड़ी भाभी कहती, लो और सुनो, इन्हें भी लोग छेड़ने लगे हैं। छोटी तो खिलखिलाकर हंसी पड़ती, क्या चॉइस है। कॉलेज पहुंचकर ये कुंठा थोड़ी और गहरी हो गई थी। और लड़कियों के आसपास भौरों की तरह मंडराने वाले लड़के मेरी तरफ झांकते भी नहीं थे। इस उपेक्षा से मैं अपने आप को बहुत ही आहत और अपमानित महसूस करती थी। इसलिए किसी का इस तरह एक टक देखना मुझे अजीब लग रहा था, आदत जो नहीं थी। कुछ देर बाद उनकी पत्नी उठकर शायद टॉयलेट तक गई थी। तब उन्होंने गला साफ किया और किंचित आगे झुककर कहा, एक्सक्यूज मी, मुझसे कह रहे हैं? मैंने जानबूझकर अनजान बनते हुए कहा, जी हाँ बिल्कुल आप ही से कह रहा हूं। क्या आप मिस जौहरी हैं? मिस रेखा जौहरी? अपने इस नाम को लेकर भी तो मैंने कितने कमेंट सुने हैं। खैर, उस विचार को परे धकेलकर मैंने उन्हें ध्यान से देखा। परिचय का कोई सूत्र हाथ नहीं आया। आप मुझे कैसे जानते हैं? आपको शायद याद नहीं है, हम लोग एमए में साथ थे। एमए इंग्लिश, प्रोफेसर चौधरी, प्रोफेसर देशपांडे, डॉक्टर मल्लिकार्जुन सर, वो सब तो मुझे याद है, पर आपको पहचान नहीं पा रही हूं। सॉरी, इसमें सॉरी कहने जैसा कुछ नहीं है। इन 20 वर्षों में मुझ में काफी फर्क आ गया है। आप लेकिन बिल्कुल वैसी ही हैं, तभी तो पहचान लिया। किसी भी स्त्री के लिए यह सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है कि आप बिल्कुल वैसी ही हैं। पर मैं जरा भी पुलकित नहीं हुई, पूछा, अपना नाम बताएंगे? अरविंद, अरविंद सक्सेना। तब तक उनकी पत्नी लौट आई थी। बोले, उषा, मैंने कहा नहीं था कि मैडम का चेहरा पहचाना सा लग रहा है? वी वर क्लासमेट्स, मैडम ने एमए में टॉप किया था। उनकी पत्नी ने गर्दन की हल्की सी जुम्बिश के साथ मेरा अभिवादन किया। मैं अब तक एक नाम याद करने की कोशिश कर रही थी। आपके साथ एक तो राजीव दुबे थे। उनकी पत्नी ने गर्दन की हल्की सी जुम्बिश के साथ मेरा अभिवादन किया। मैं अब एक एक नाम याद करने की कोशिश कर रही थी। आपके साथ एक तो राजीव दुबे थे, आनंद भार्गव, वसीम अहमद, सुयश बागची, बस इतने ही नाम याद आ रहे हैं। इतने नाम याद आ गए यही बहुत है, एक लंबा अरसा भी तो हो गया है। और आप लोग तो चार ही थी, हम तो 10 थे। आपकी बाकी की फ्रेंड्स कहाँ हैं? कभी मुलाकात होती है? अब उनसे क्या कहती कि मैं जानबूझकर किसी से संपर्क नहीं रखती हूँ। गोलमोल सा जवाब दे दिया, नीलिमा की तो तुरंत ही शादी हो गई थी और वह पति के साथ यूके चली गई थी। रूबी शायद दुबई में है। चित्रा से एक आध बार मुलाकात हुई थी, वह चेन्नई में है, हस्बैंड मशहूर कार्डियक सर्जन हैं। और आप?
मैं एक गर्ल्स डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ। जगह का नाम मैंने जानबूझकर नहीं बताया।
वाह, फैब्यूलस फैमिली।
इसी प्रश्न से डर रही थी मैं, पर जब सामने आ ही गया तो जवाब भी दे डाला। मिस्टर की 7-8 साल पहले कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई।
ओह, सो सैड।
बेटा यूएसए में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है।
आती जाती रहती होंगी वहां?
एक बार गई थी। कह रहा है कि रिटायरमेंट के बाद यहीं आकर रहिए। मैं ग्रीन कार्ड बनवा रहा हूं।
मैंने कहा तब की तब देखेंगे।
बिल्कुल मत जाइएगा, उनकी पत्नी ने पहली बार मुंह खोला।
बोर हो जाएंगी।
मैं तो दोनों बहुओं की जचकी में गई थी, परेशान हो गई थी। यहां नौकरों की पलटन पालते हैं, वहां बर्तन हाथ से मांजने पड़ते हैं। मैंने दोनों से कह दिया है कि अगली बार अपनी अपनी अम्माओं को बुला लेना, मेरे बस का नहीं है।
मुझे लेकिन वहां बहुत अच्छा लगता है,
अरविंद बोले। अच्छा क्यों नहीं लगेगा, आपको क्या फर्क पड़ता है? जैसे यहाँ हर चीज हाथ में रखी मिलती है, वहां भी मिलती थी। परेड तो मेरी होती है ना।
एक बात अच्छी है वहां, पुरुष भी बराबरी से काम में हिस्सा बटाते हैं, मैंने कहा।
प्लेटें धोने से लेकर बच्चे की नैपी बदलने तक सब कर लेते हैं।
वे अमेरिकन पति होते हैं, पर ये तो शुद्ध भारतीय पति है ना।
पति पत्नी की इस मीठी नोकझोंक का एक फायदा यह हुआ कि बातचीत का रुख दूसरी ओर मुड़ गया और मैंने राहत की सांस ली। परिचय के सूत्र नए सिरे से जुड़ जाने के बाद यह स्वाभाविक था कि हम लोग खाना साथ में खाने के दौरान मैं भारत की विभिन्न खाद्य संस्कृति पर बात करती रही। मेरे इस ज्ञानकोश को देखकर वे लोग चकित थे। खाने के बाद मैंने तुरंत सोने की तैयारी कर ली। सेकेंड एसी में यात्रा करने का एक फायदा यह भी है कि आप जब चाहें जितनी देर चाहें सो सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे ऊपर वालों की सुविधा का विचार नहीं करना पड़ता। इतनी जल्दी सोने की आदत नहीं थी, फिर भी मैं दम साधे पड़ी रही। मैं किसी भी बहाने अपनी जीवन गाथा के पृष्ठ उन लोगों के सामने खोलना नहीं चाहती थी। आज यह व्यक्ति पत्नी के सामने मेरे साथ बड़े आदर से पेश आ रहा है, पर कॉलेज के जमाने में इन लोगों का पूरा ग्रुप मुझे किस हे दृष्टि से देखता था यह मैं भूली नहीं हूं। सब लोग मेरी बुद्धि का लोहा मानते थे, मानना ही पड़ता था, पर अपमानजनक टिप्पणियां भी कसते थे। किसी दिन अगर चित्रा और नीलिमा गोल कर जाती तो पूरी क्लास आहें भरने लगती। आज तो यार सूखा पड़ गया है, सारी रौनक ही गायब हो गई है। एक बार चौधरी सर ने वह फुसफुसाहटें सुन ली और कसकर डांट लगाई थी।
इफ यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर स्टडीज प्लीज डोंट अटेंड माई क्लास, आई विल मार्क यू प्रेजेंट। पर लड़कियों पर डोरे डालने के लिए मेरे पीरियड का उपयोग मत किया करो।
सर के जाने के बाद इस विषय पर गहन चर्चा हुई थी। किसी ने कहा, यार सर तो सुपर इमेजिनेटिव हैं, डोरे डालने लायक लड़कियां भी तो हो। इस बात पर एक सम्मिलित ठहाका लगा था। बात किसने कही थी यह पता नहीं, पर हंसी में तो सभी शामिल थे, ये अरविंद सक्सेना भी। इसे अपनी कहानी सुनाकर मैं सहानुभूति नहीं लेना चाहती। मैं उपहास बर्दाश्त कर सकती हूँ, सहानुभूति नहीं। मेरी शादी को लेकर शुरू से ही सब लोग बहुत चिंतित थे, घर के भी और बाहर के भी। ऐसे मामलों में कई बार बाहर वाले जरा ज्यादा ही फिक्रमंद होने लगते हैं, जबकि उन्हें कोई सरोकार नहीं होता। काजी जी दुबले क्यों वाला मामला होता है, पर मेरी शादी में आए हुए सभी लोग विस्मय चकित थे। ऐसी लड़की के भाग्य में ऐसा घर, ऐसा वर, कईयों के दिल पर तो सांप लौट गए। किसी दिलजली आत्मा ने कहा भी, अरे बड़े आदमियों की लड़कियां देखकर नहीं तौल कर ब्याही जाती हैं। निमंत्रितों में खुश होने वालों की अपेक्षा ताज्जुब करने वाले ज्यादा थे। और ऐसा भी नहीं है कि हर एक के मन में से दुआ ही निकलती हो या कि सबकी नजर पाक साफ हो। 6 महीनों में ही असर सामने आ गया। पति देव से ठीक से परिचय भी नहीं हो पाया था और वे ड्यूटी पर लौट गए। फिर 6 महीने तक मैं ससुराल और पीहर के बीच हिंडोले की तरह झूलती रही। शादी के बाद साल भर तक तीज त्योहार चलते ही रहते हैं, पर किसी भी त्योहार पर श्रीमान जी ने दर्शन नहीं दिए। छुट्टी का शाश्वत बहाना था। वे तीज पर नहीं आए थे, पर जब करवा चौथ पर भी नहीं आए तो पापा का माथा ठनका। पापा ने बड़े भाई साहब को मेरी ससुराल भेजा, कहा कि उसे लेकर सीधे प्रोजेक्ट साइट पर पहुंच जाओ और याद रखना किसी को कानो कान खबर ना हो। भाई साहब पसोपेश में पड़ गए, बोले तुम्हारे सास ससुर को तो मैंने समझा दिया है कि मैं तुम्हें लेने आया हूं, पर जमाई बाबू को तो सच्चाई बतानी पड़ेगी ना। वह प्रोजेक्ट साइट रेलवे स्टेशन से 35-40 किलोमीटर दूर जंगल में है, मैं तुम्हें लेकर कहां भटकता फिरूंगा। लिहाजा उन्हें फोन किया गया, वे बाकायदा स्टेशन पर लेने पहुंचे। यूं तो स्टेशन से बसें भी चलती थी, पर वे हमारे लिए जीप लेकर आए थे। 6 महीने बाद ही सही अपने घर जाने की उमंग मुझ में हिलोरे ले रही थी। मैंने मन ही मन अपने घर को सजाना सवारना शुरू कर दिया था, पर घंटे बर्बाद ही मेरे सारे उत्साह पर पानी फिर गया। वे हमें लेकर प्रोजेक्ट के गेस्ट हाउस में पहुंच गए। वहां 2 सूट हमारे लिए रिजर्व थे। उन्होंने कहा कि मेरा घर तो बैचलर्स का अड्डा बना हुआ है, हम 4 लोग साथ में रहते हैं, पहले से कुछ आइडिया होता तो मैं कुछ मैनेज कर लेता, अब 3-4 दिन तो लग ही जाएंगे। भाई साहब कुछ नहीं बोले, बस शाम की गाड़ी से चले ही गए। उनका काम खत्म हो गया था। 4 दिन फिर हमने गेस्ट हाउस में ही बिताए। वे बोले, तुम्हें हनीमून पर नहीं ले जा सका था ना, चलो यही हनीमून मनाते हैं। हनीमून हमारा गेस्ट हाउस के कमरों में ही मन रहा था। मेरा बहुत मन था साइट देखने का, दूर से ही सही अपना घर भी देखना चाहती थी, पर वे खुद भी ड्यूटी पर नहीं गए ना अपने दोस्तों से मुझे मिलवाया। बोले मैंने बॉस से परमिशन टू लिव इन क्वार्टर्स ले ली है, रूममेट से भी कह दिया है जल्दी से अपना इंतजाम कर ले। 5वें दिन सुबह ये बुरा सा मुंह बनाकर लौटे, एक प्रॉब्लम आ गई है, तुम्हें घर जाना पड़ेगा। कैसी प्रॉब्लम? माँ बीमार है। किसकी? मेरी और किसकी? आपकी माँ बीमार है और आप नहीं चलेंगे? मेरा तो मुश्किल लगता है, अभी अभी 4 दिन की छुट्टी ले चुका हूं। मैं कुछ देर चुप रही, फिर एकाएक मैंने पूछ लिया, ये आंख मिचोली हम कब तक खेलेंगे? कैसी आंख मिचोली? आपको क्या लगता है, आपने किसी 5वीं फेल अनपढ़ गवार से शादी की है? इसमें पढ़ाई की बात कहां से आ गई? 6 महीने तक आप अपने लिए स्वतंत्र घर का इंतजाम नहीं कर सके। इस बात पर ना भाई साहब ने यकीन किया था ना मैंने, वे तो चुपचाप चले गए। बट आई हैव कम टू स्टे, मैंने स्टे पर अतिरिक्त जोर देते हुए कहा, नाउ कम क्लीन। वे कुछ देर तक भौचक से मुझे देखते ही रहे। उन्हें शायद पहली बार एहसास हुआ कि उनके सामने जो औरत खड़ी है वह अंग्रेजी में एमए है और कॉलेज में पढ़ा रही है। वे पहले तो कुछ सकपकाए, मेरी नजर का सामना करने से कतराते रहे, फिर हिम्मत बटोर कर बोले, सच सुनना चाहती हो ना? इतना साहस है तुम में? मैंने पिछले 6 महीने इतनी घोर मानसिक यंत्रणा झेली है कि अब मैं कुछ भी सुनने के लिए तैयार हूं। तो सुनो, यह शादी मैंने अपनी मर्जी से नहीं की थी, मुझे मजबूर किया गया था। किसने? मेरे पूज्य पिताश्री ने। मुझे तुम जरा भी अच्छी नहीं लगी थी, पर मेरे पिता को वह दहेज बहुत अच्छा लगा जो तुम साथ लाने वाली थी। उससे मेरी दोनों बहनें पार लग सकती थी, इसलिए मुझे मजबूर किया गया, उन कष्टों का वास्ता दिया गया जो घर वालों ने मेरे लिए उठाए थे, उस खर्च का ब्यौरा दिया गया जो मेरी पढ़ाई पर हुआ था, मुझे बेटे का भाई का फर्ज समझाया गया, मेरी पूरी तरह घेराबंदी की गई, आखिरकार मुझे हथियार डाल देने पड़े। मैंने शादी के लिए हाँ तो कर दी, पर तभी सोच लिया था कि यह घर मैं हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, बैठे रहे अपनी बहू और दहेज को लेकर, मैं इस तरफ झांकूंगा नहीं। मुझे लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे की धरती धसक गई है और मैं किसी गहरे गर्त में डूबती जा रही हूं। अगर वे कहते कि मेरा मन कहीं और है, यह शादी मैंने मजबूरी में की है, तब भी मुझे इतना आघात ना पहुंचता। हनीमून के वे 4 सुनहरे दिन, 4 रंगीन रातें भूत प्रेतों की तरह मुझे घेर कर खड़े हो गए। दम सा घुटने लगा मेरा। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आंसुओं को लौटाया और बहुत ही स्पष्ट आवाज में कहा, आपको अपनी रकम मिल गई है ना? मुझसे शादी का मुआवजा आप पा ही गए हैं ना? अब एक उपकार और कीजिए, मुझे तुरंत मेरे घर भेज दीजिए। आपके घर से अब मेरा कोई सरोकार नहीं है और घर पहुंचकर मैं तलाक के कागजात भिजवा रही हूँ, कृपया उन पर दस्तखत करके भिजवा दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर एवरीथिंग। मैं इतनी जल्दी और वो भी अकेले लौट आऊंगी, ऐसा किसी ने सोचा भी ना था। भाई साहब को लग रहा था कि दाल में कुछ काला है, पर पूरी दाल ही काली होगी ऐसा उन्होंने भी नहीं सोचा था। तलाक की बात सुनकर सब सकते में आ गए। माँ पापा ने समझाया, सब्र से काम लो, शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है, हम बात करते हैं, हो सकता है कोई हल निकल आए। मैंने साफ कह दिया, तलाक हो या ना हो, मैं अब उस आदमी के पास लौटकर नहीं जाऊंगी। अच्छा देखते हैं, वकील से बात करते हैं, पापा ने जैसे मेरा मन रखने के लिए कह दिया। मुझे बताए बगैर ही उन्होंने मेरे ससुर जी से बात की। वे दौड़े चले आए, पापा से बोले, बिटिया को समझाइए, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचे, एकदम कोई निर्णय ना ले। अंकिता की शादी तय कर रहा हूँ, दिवाली बाद नवंबर में सगाई है, यह बात फैल गई तो रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। मतलब उन्हें मेरे सुख दुख से कोई सरोकार नहीं था, वे सिर्फ अपनी बेटी की शादी में कोई विघ्न नहीं चाहते थे। बाप बेटे दोनों एक जैसे निकले। उनकी इस स्वार्थ परकता ने मेरे तलाक के इरादे पर जैसे मुहर लगा दी। इस बीच मैंने एक नौकरी भी ढूंढ ली थी और एक नए आत्मविश्वास से भरी जिंदगी की शुरुआत कर दी थी। तभी एक साक्षात्कार हुआ। हमारा अल्पकालीन हनीमून व्यर्थ नहीं गया था। मैं वहां से अकेली नहीं लौटी थी, उनका अंश भी मेरे साथ आया था। मैं उस नालायक स्वार्थी इंसान की संतान को जन्म नहीं देना चाहती थी, पर मेरे अबॉर्शन के प्रस्ताव को घर में किसी ने स्वीकार नहीं किया। माँ की दृष्टि में तो ये महापाप था। बड़ी भाभी बोली कि हो सकता है संतान के मुंह में ही वे तुम्हें पुनः स्वीकार कर ले। छोटी भाभी बोली, अगर जिंदगी अकेली ही बितानी हुई तो कोई सहारा तो चाहिए। इस उहापोह में इतने दिन निकल गए कि फिर गर्भपात का समय ही नहीं रहा। मेरी अनिच्छा के बावजूद वह गर्भ पलता रहा, बढ़ता रहा और एक दिन बड़ी अनास्था से मैंने उस शिशु को जन्म दिया। माँ ने जैसे ही उसे मेरी गोद में दिया, एक जादू सा हुआ। सारी अनास्था, सारा तिरस्कार, सारा रोष मेरी ममता के ज्वार में बह गया। मैं सोचने लगी, वे कैसी माएँ होंगी या कि उनकी कैसी मजबूरी होगी कि वे अपने कलेजे के टुकड़े को मंदिर की सीढ़ियों पर कचरे के डिब्बे में या रेल के कंपार्टमेंट में छोड़ आती होंगी। पता नहीं कैसे पल भर में ही वह नन्हा जीव मेरे जीवन का केंद्र बिंदु बन गया। मेरी सारी दिनचर्या उसी के आसपास सिमट कर रह गई। लगा कि इसे छोड़कर अब मैं एक पल भी नहीं रह पाऊंगी। प्रसूति अवकाश समाप्त होते ही मुझे वास्तव का भान हुआ। पहले दिन कॉलेज जाते हुए मन रो रहा था, पांव मन मन भर के हो रहे थे, उसे गोद से उतारने की इच्छा नहीं हो रही थी। माँ ने कहा, बिटिया समझ लो आज से मैं इसकी माँ हूँ, यह मेरा बच्चा है, मैं ही इसे पालूंगी, तुम निश्चिंत होकर काम पर जाओ। अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो घर बैठो और बच्चा संभालो। घर बैठने का सवाल ही नहीं था, अब मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ मेरा बेटा भी था। मैं उसे एक आत्मसम्मान भरी जिंदगी देना चाहती थी, इसलिए कलेजे पर पत्थर रखकर मैंने उसे माँ की गोद में दे दिया और अपनी रुलाई रोकते हुए गाड़ी में जा बैठी। माँ सिर्फ कहकर ही नहीं रह गई, उन्होंने अपना काम भी पूरा किया। उम्र की 10-20 सीढ़ियाँ उतरकर वे एकदम जवान लड़कौत बन गई। उनके बल पर ही मैंने अपनी PhD भी पूरी कर ली। क्षितिज जो जैसे उनका ही होकर रह गया था। भाभियों को बड़ा रश्क होता था, कहती, हमारे बच्चों को तो कभी नैपी भी नहीं बदली होगी, अब देखो कितनी फुर्ती आ गई है। क्षितिज शायद 5वीं में था जब माँ एकाएक चल बसी। मैं अपने को इस अपराध बोध से कभी मुक्त नहीं कर पाई कि जब उनका आराम करने का समय था, मैंने उन्हें काम से लाद दिया। उनकी सेवा करने वाले बहुत थे, पर उन्होंने खुद ही सेवा का व्रत ले लिया था। किसी को पता ही नहीं चला कि वे भीतर ही भीतर पस्त हो गई थी। गाथा में अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी द्वारा लिखित कहानी तहाद नजर एक बयाबां सा क्यों है। इस कहानी का पहला भाग, जिसे प्रस्तुत कर रही थी आरती श्रीवास्तव।